सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन,
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन,
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन,
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन।
एक बाबा एक मुरली एक मधुबन,
सखीरी
बाबा को नित याद करूं,
बाबा को नित याद करूं,
उनकी मुरली रोज सुनूं,
उनकी मुरली रोज सुनूं,
मधुबन
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन,
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन।
ओम शांति। सूफी संतों के इतिहास में एक महान हस्ती कभी हुई थी जिनका नाम था हसन। पीछे सुनाई दे रहा है? वो जब मरणासन्न थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में किसको गुरु बनाया, क्योंकि आपके मुख से हमने कभी किसी गुरु का नाम नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में तीन लोगों को अपना गुरु बनाया। पहला एक चोर, दूसरा एक कुत्ता और तीसरा एक बच्चा। शिष्य पूछते हैं कैसे, तो वो कहते हैं, एक बार मैं किसी शहर में गया, रात हो गई थी, रहने को कुछ ना था और आखिरकार एक चोर मिल गया और मैं उसकी झोपड़ी में रहने गया, और वो चोर दिल का अच्छा था, उसने मुझे रहने के लिए जगह दी। और वो चोर रोज रात को चोरी करने निकलता था और सुबह लौट कर आता था, पर मैं एक मास उसके घर में था और एक भी दिन वो चोरी नहीं कर पाया। रात को जाता था बहुत सोच कर, आज यहाँ चोरी करूँगा वहाँ चोरी करूँगा, पर सुबह खाली हाथ कर लौट आता था। ये सूफी संत कहता है, मैंने उससे एक बात सीखी कि वो रोज खाली हाथ कर आता था सुबह सुबह, फिर भी आशा नहीं छोड़ता था, कहता था आज रात को तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। रोज रात को जाता सुबह खाली हाथ लाता, फिर भी ये आशा कभी नहीं टूटती कि आज जब रात को फिर जाऊंगा तो जरूर कुछ ना कुछ चोरी करके लाऊंगा। आज तो ये कारण बन गया, पर अब मुझे लाना ही है, चोरी करने जाना ही है। उस हसन ने कहा, जब मैंने उसको ये अवस्था देखी, ये बात सुनी, तो मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैं भगवान को कब से ढूंढता हूँ, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ और कितनी बार जीवन में उदास हो गया क्योंकि वो मिला नहीं। और ये चोर देखो, जो निकृष्ट कर्म करने जाता है उदास नहीं होता है, फिर भी इतनी कोशिश करता है, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता है, फिर भी हर रात नए उमंग उत्साह से जाता है। तो हसन कहता है, ये मेरा सबसे पहला गुरु है, माय फर्स्ट मास्टर, कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी बाधाएं आ जाए, कितने प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां, फिर भी हार नहीं मानना, निराश नहीं हो जाना, दुखी नहीं हो जाना, एक चोर शूद्र अति शूद्र कार्य करते हुए भी दुखी नहीं होता, तो हम सबसे महान कार्य कर रहे हैं संसार का। हसन कहता है, ये मेरा पहला गुरु। मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। उस कुत्ते से मैंने सीखा कि एक बार मैं बैठा था और एक तालाब था, और वो कुत्ता बहुत प्यासा था, और वो कुत्ता तालाब में पानी पीने आया, और पर उसने अपनी ही परछाई जैसे देखी, डर गया, बहुत डर गया, फिर पीछे हटा, फिर अपनी परछाई देखी, फिर डरा, परंतु प्यास इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय देखा फिर बाहर आया, देखा फिर बाहर आया, और एक समय ऐसा आया कि कूद गया उस तालाब में, और कूदते ही जो परछाई थी वो समाप्त हो गई, और फिर आराम से उस पानी में नहाने लगा और बहुत खुश दिखाई देने लगा। हसन लिखता है कि मुझे भय था अज्ञात का, मुझे भय था पता नहीं जिस मार्ग पर मैं निकल पड़ा हूँ उसमें क्या मिलने वाला है, मुझे पता नहीं भगवान के मार्ग पर मैं निकल पड़ा हूँ उसमें आगे क्या होने वाला है। समर्पण के मार्ग में सामने केवल अज्ञात है, अननोन, भय है, कोई अज्ञात से भय, कोई सूक्ष्म भय जिन्होंने हमको पकड़ रखा है और जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। हसन ने कहा, उस कुत्ते से मैंने सीखा कि अनंत के सागर में डूब जाओ, उस कुत्ते से मैंने सीखा कि भय जो है वो केवल एक छाया है। मेरा तीसरा गुरु है छोटा सा बच्चा। उस बच्चे से मैंने क्या सीखा, मैंने देखा एक बार एक छोटा सा बच्चा दिया लेकर मस्जिद की तरफ जा रहा है, और हसन को लगा क्यों ना थोड़ी सी हंसी मजाक की जाए, और वो उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मस्जिद जा रहा हूँ दिया जलाने। हसन पूछता है, क्या एक प्रश्न पूछूं, मुझे ये बताओ ये दिए में जो ज्योति जल रही है, ये प्रकाश, ये आया कहाँ से? उस छोटे से बच्चे को पूछता है हसन कि ये जो दिया है इसमें जो ज्योति जल रही है, ये जो प्रकाश है, ये कहां से आया? हसन सोचता है, ये बच्चा ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, इस प्रश्न का तो कोई भी उत्तर नहीं दे पाएगा, ये ज्योति आई कहां से? पर वो बच्चा बहुत चतुर होता है, वो बच्चा उस दिए को फूंक मार के बुझा देता है और कहता है, वहीं से जहां ये अब चली गई। हसन को धक्का बैठता है कि मैं अपने आप को कितना ज्ञानी समझता था, मैं तो ये समझता था मैंने सब कुछ जान लिया, परंतु इस संसार में अभी भी कितनी बातें हैं, इस संसार में इतना ज्ञान विशाल है कि जो कुछ मैंने जाना है आज लगता है मैंने कुछ भी नहीं जाना, यात्रा तो अब चालू हुई है। जो कुछ मैंने अब तक जाना है, स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, ड्रामा के बारे में, संबंधों के बारे में, जीवन के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, शायद वो जानना ही कहीं भ्रम तो नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञान होने का भ्रम। मैं ज्ञानी हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे सब कुछ पता है, और अक्सर गलतियां उनसे होती है जो सब कुछ जानते हैं। हसन कहता है ये मेरे तीन गुरु हैं, इन तीनों ने मुझे बहुत सिखाया, इन तीनों ने मुझे नम्रचित बनाया, इन तीनों ने मेरे अंदर जो ज्ञान की अकड़ थी उसको झुकाया। जैसे ये तीन रतन हैं मेरे जीवन के, उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी सखी रे मैंने क्या पायो तीन रतन। कौन से है वो? एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। संसार का सब कुछ छिन जाए पर ये तीन यदि रह जाए मन में, तो हम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये तीनों ही हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे उस सूफी संत को उन तीनों ने सिखाया, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए ये तीन गुरु कहो, रतन कहो, शिक्षक कहो, महत्वपूर्ण बातें कहो या जीवन का आधार स्तंभ कहो है। सबसे पहला है एक बाप। एक बाप में कुछ बातें हैं, एक मुरली में कुछ बातें हैं और एक मधुबन में कुछ बातें हैं। ऐसी तीन चीजों की चर्चा आज की इस भट्टी की शुरुआत में हम करेंगे। सबसे पहला है एक बाप। एक बाप में भी सबसे पहली बात है निश्चय। उस एक परमात्मा में निश्चय कितना है। बाइबल में दिखाया है आवाज कम है बोल रहे, पीछे सुनाई आ रही है। बाइबल में वर्णन है जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहा है, एक झील है जिसका नाम है गैलीली, और वो उस झील में बैठकर एक नाव में बैठकर अपने शिष्यों के साथ जा रहा है। नाव आगे बढ़ती है और अचानक से तूफान आ जाता है, सारे शिष्य घबराने लगते हैं। समुद्र वो झील का पानी नाव में आने लगता है, नाव हिचकोले लेने लगती है, डोलने लगती है, तूफान तेज पर तेज होते जाता है। सभी शिष्य इतने घबराते हैं कि देखते हैं हमारे गुरु कहाँ है, जिसको रबाय कहा गया, रबाय अर्थात मास्टर गुरु। तो देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट तो सोया पड़ा हुआ है। वो जाकर अपने गुरु से कहते हैं, मास्टर मास्टर प्लीज गेट अप, देखो क्या हो रहा है, हमारी नाव डूबने को है, पानी सारा जहाज में आ रहा है। जीसस क्राइस्ट उठता है, हाथ करता है ऐसा शांत, और वो तूफान रुक जाता है। और उसके बाद वो अपने ही शिष्यों से कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि जिस नाव में मैं बैठा हूं वो डूब सकती है, कभी डूबेगी? क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि जिस नाव में मैं तुम्हारे साथ हूं क्या वो डूब जाएगी? क्या यही तुम्हारा ईमान है? क्या यही तुम्हारा निश्चय है? क्या यही तुम्हारी श्रद्धा विश्वास फेथ है? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, संगम युग पर स्वयं भगवान खिवैया बनकर आया है, संगम युग पर स्वयं भगवान हमारा केवट बनकर आया है, तो जिस नाव में हम बैठे हैं क्या वो डूब सकती है? ऐसा उस एक बाप में निश्चय हो कि जीवन में सारा संसार मेरे विरुद्ध हो जाए परंतु स्वयं भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं हो सकेगा। जिसको जो करना है करे, हमारे साथ स्वयं भगवान है। एक बाप अर्थात एक बाप में निश्चय। किसने किसका हाथ पकड़ा है? हमने उसका हाथ पकड़ा है या उसने हमारा? यदि हम उसका हाथ पकड़े तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, या है? जैसे रामायण में दिखाया है, श्री राम जी लक्ष्मण और सीता नाव में बैठते हैं और केवट नाव चला रहा है, पर केवट बहुत ही चतुर भक्त है। वो कभी नाव इधर ले जाता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। राम जी कहते हैं, केवट ये क्या कर रहे हो, हमें भय लगता है, तुम नाव ऐसे ऐसे चला रहे हो, कहीं हम गिर गए तो? केवट कहता है, प्रभु तुम्हें आपको अगर इतना भय लगता है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो जानता है यदि आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़े तो आत्मा का कोई भी भरोसा नहीं, परंतु जब भगवान ही हाथ पकड़ ले तो हम डूब ही नहीं सकते। तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। राम जी कहते हैं, पैसे कितने हुए, उतराइए, कितने पैसे दूं तुमको? वो कहता है, तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार करायो राम। मैं तो इस छोटी सी नदी का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो। जब तेरे घाट पर हम आएंगे तब तुम पार लगायो राम। वो केवट बनकर अब आया है, भगवान स्वयं खिवैया बनकर आया है। हमारी जो जीवन की नाव है स्वयं भगवान चला रहा है, इसलिए भय कैसा। तो बाबा से ऐसा अटूट प्रेम, उस पर ऐसा अटूट निश्चय हो। तो एक बाप अर्थात एक बाप में निश्चय, एक बाप अर्थात दूसरा एक बाप से सर्व संबंध, वही सब कुछ है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ। एक संत ने लिखा है, भगवान मेरा सब कुछ है, मेरा चाचा मामा काका मामी सर्वस्व वही है। क्या ऐसे सारे संबंध हमने उसके साथ जोड़े हैं? बाबा ने कहा, यदि संगम युग पर एक भी संबंध कम होगा उसके साथ तो उसी संबंध से द्वापर युग में दुख होगा। यदि उसको आप पति नहीं बनाया तो शायद पति से दुख होगा किसी जन्म में। अगर अभी उसको बच्चा नहीं बनाया तो किसी जन्म में बच्चे के द्वारा दुख मिलेगा। सारे संबंध उससे जोड़ देना, सर्वस्व वो है। और केवल कहने मात्र नहीं परंतु अनुभव। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया था, ब्रह्मा कुमारी बहन। उसने हमसे कहा कि अनुभव मैं आपको सुना रही हूं पर मुझे डर है, शायद आप इसे ना मानो। मैंने आज तक ये किसी को भी नहीं सुनाया क्योंकि ऐसा लगता है शायद लोग मेरी बातों को ना माने, पर ये मेरे साथ हुआ है। हमने कहा, बताओ क्या हुआ? उसने कहा, मैं एक बार विदेश गई थी, वहां पर विदेश या कहीं दूसरी जगह गई थी और वहीं पर मुझे सेवाएं दी गई और रोज मुझे किसी गीता पाठशाला पर जाना पड़ता था शाम को। और एक बार मैं जा रही थी, सुनसान रास्ता था और रास्ते पे झाड़ियां बिछी थी थोड़ी, और अचानक मैं चलते चलते गिर गई और वो एक दलदल था, वो दलदल में मैं धंसती चली गई अंदर ही अंदर। वो इतना गहरा दलदल था कि पैर तक आ गई, सारी सफेद साड़ी वो दलदल के अंदर। और इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मृत्यु निश्चित थी। उसने कहा वो दलदल ऐसा गहरा था कि पकड़ने को भी कुछ नहीं, जहां पकड़ू वहां नीचे जा रहा है हाथ, सब तरफ से दलदल ही दलदल। उसमें मैं धस्ती जरी जा रही थी, कमर तक उसमें चली गई। फिर भी देखा कि कोई है बचाने वाला, कोई तो बचाए, हाथ पटके जोर जोर से, कोई भी नहीं था, चिल्लाई भी कोई भी नहीं था। और जब ऐसी अवस्था आई कि और नीचे और नीचे और नीचे जाने लगी जाने लगी, एकदम से बाबा को ऐसा याद किया, शिव बाबा यदि तू चाहता है कि मैं जीऊं और तेरी सेवा करूं और तुझे मैंने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, और कहते कहते जैसे वो खो गई बाबा की याद में कि तू ही सर्वस्व है, ऐसा भाव जागा कि सारी देहधारियों की यादें समाप्त हो गई और एक बस तू ही आधार है। और उसने कहा जब लगभग छाती तक दलदल में घुस गई थी, एक पल में जैसे मैं बेहोश हो गई, और अगली बार जब मैंने आंख खोली अगले पल तो मैं दलदल से बाहर थी, और मैंने देखा कौन है, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसने कहा यह घटना मेरे साथ हुई, मुझे लगता है कोई इसे मानेगा नहीं, इसलिए मैंने आज तक नहीं बताई, आपको पहली बार बता रही हूं। फिर वहां से निकली, वहां एक नल मिला, उस नल से उसने साड़ी थोड़ी ठीक की पानी से। ऐसे ऐसे आत्माओं के अनुभव है, पर वो याद दिल से होनी चाहिए। ये मुख का सौदा नहीं है, ये दिल का सौदा है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। केवल मुख से बाबा 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 के नारे लगाने से नहीं होगा, वो पुकार आर्त पुकार हो, वो पुकार हृदय के गहराई से निकली हुई पुकार हो। क्या हमारी याद ऐसी है? एक में निश्चय, एक से सर्व संबंध, एक से प्यार, तीसरा केवल एक से प्यार। जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स है जो बच्चे के वार्ड में काम करती है, बच्चों के वार्ड में, वहां पर 50 पेशेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर, सबका देखभाल, सबकी देखभाल करती है सुबह से शाम तक, 8 घंटा ड्यूटी है, कभी नाइट ड्यूटी है, सबका ध्यान रखती है, परंतु उसका मन कहाँ लगा रहता है, अपने बच्चे की तरफ जो घर में है, और वो शायद बुखार है उसको और वो बीमार है। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं रख रही है वार्ड के बच्चों का, पेशेंट्स का, उनको भी देख रही है, पर मन कहाँ लगा है, घर में। उसी तरह ये संसार में हम हैं, इसी तरह संसार के सारे संबंध है, उसी तरह संसार के सारे लोग हैं, मित्र है, संबंधी है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, सबके साथ है, परंतु मन उधर। भक्ति मार्ग में कहा है, सुना होगा, प्रभु प्रेम कैसा होना चाहिए, दांत के दर्द की तरह, टूथेक। दांत का दर्द हो और पेन किलर ना लो, कोई भी दर्द की दवाइयां, सारा ध्यान उस दांत के दर्द की तरफ रहता है। काम कर रहे, घूम रहे, चल रहे, उठ रहे, सब कुछ करते हुए भी ध्यान कहाँ रहता है, दांत के दर्द की तरफ। परमात्मा प्रेम दांत के दर्द की तरह हो, जो निरंतर हो, सतत हो। क्या ऐसा प्यार है? बाइबल में लिखा है, भगवान उसमें कहता है, आई थाय गॉड थाय लॉर्ड, आई एम अ जेलस गॉड, मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना, मैं कैसा हूं, बहुत ईर्ष्यालु हूं, मुझे छोड़कर किसी से भी किसी को याद मत करना, किसी से प्यार मत करना.
Lord, I am a jealous God.
बाबा को बड़ा अच्छा नहीं लगता जब हम उसको छोड़ के किसी और को याद करते हैं. एक अव्यक्त वाणी है मियां बीबी राजी 80s की, जिसमें बाबा ने कहा है जब मियां देखता है कि बीवी किसी और के साथ जा रही है तो बाप मियां को बड़ा दुख होता है. एक से प्यार, चौथा एक की लगन, बस एक की ही लगन, धुन धुन धुन, उसी की याद, उसी से प्यार, उसी से संबंध, उसी की लगन. क्या ऐसी हमारी अवस्था है? भक्ति में तो हमने बहुत याद किया था, ज्ञान में पता नहीं क्या हो गया, याद कम हो गई. तब पता नहीं था वो कौन है, तब भी याद करते थे, तब भी आंसू बहाते थे, अब आंसू सूख गए. भक्ति मार्ग में उसके लिए क्या क्या करते थे, ज्ञान में आने के बाद पेट भर गया, ढीले हो गए, अमृत वेला किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्राओं पर कितने धक्के खाते थे, अभी धक्के खाने तो बंद हो गए पर पुरुषार्थ भी बंद हो गया है. एक की लगन. भक्ति मार्ग में मीरा का उदाहरण है, वो मीरा जिस राजस्थान में कभी स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया, उस राजस्थान की सड़कों पर वो हरि गुण गाने लगी, लोक लाज सब कुछ छोड़कर, और राज रानी प्रभु दीवानी हो गई. कैसा प्यार होगा अंदर, क्या हमारा भी प्यार ऐसा है? हर एक अपने आप लिस्ट निकाले, वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने मेरा भगवान के लिए प्यार कम कर दिया है. हर एक इस बारे में चिंतन करे, मैं क्या करूं जिससे बाबा के लिए प्यार बढ़ जाए. एक बाप, उसके बाद अगला है एक के प्रति समर्पण. एक के प्रति समर्पण, बस उसी की याद और उसी के प्रति जीवन समर्पण, ऐसा कुछ करना है कि जो बुद्धि यहां वहां भटकती है वो एक में लग जाए.
एक के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण, मन से समर्पण, तन से समर्पण, धन से समर्पण, वाचा से समर्पण, कर्म से समर्पण, कर्म के परिणाम का समर्पण, संबंध का समर्पण. हमारे जो भी संबंध है यदि हम भगवान के सामने रखे तो क्या वो स्वीकार होंगे? बाबा ने कहा है तुम्हारे संबंधों में पवित्रता हो, प्यूरिटी, आपसी जो संबंध है उसमें प्यूरिटी हो. यदि इस संसार की किसी भी आत्मा के साथ मेरा कोई भी संबंध है और उस संबंध को मैं भगवान के सामने रखूं तो क्या वो स्वीकार होगा? क्या भगवान तस्लीम करेंगे उस संबंध को? पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का, भाई बहन का, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी का, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार का, माँ बेटे का, कोई भी संबंध संसार का, यदि उसे भगवान के सामने रखा जाए तो क्या बाबा उसे स्वीकार करेंगे? यदि उसमें काम का की दुर्गंध है, यदि उसमें आसक्ति है, मोह है या घृणा है और नफरत है, बाबा उस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे. तो ये समर्पण नहीं हुआ। फिर संपूर्ण समर्पण, एक के प्रति समर्पण, उसके बाद एक ही बल, एक वही बल, एक वही आधार, एक वही संबल, एक वही सपोर्ट, एक उसी की मदद। सबसे पहला ध्यान हमारा कहां जाता है, देहधारियों की तरफ या भगवान की तरफ? यह प्रश्न अपने आप से पूछना है। अचानक मुख से क्या निकलता है, एकदम से संकट आ गया, कोई बीमारी आ गई, ऐसी बीमारी की जो आज तक पता नहीं थी और अचानक पता चल गई और वो पूरे शरीर में फैल गई है, सबसे पहला कौन सा शब्द निकलता है? बाबा निकलता है या संसार के लोगों का नाम निकलता है? एक बाप से प्यार, एक बाप की लगन, एक बाप की याद। अभी अभी स्पार्क की रिट्रीट चालू है ओआरसी में, 4 दिन की रिट्रीट है, लगभग 1000 भाई बहने आए हैं। कल हम वहां थे और ये जो 4 दिन की रिट्रीट है भट्टी, उसका थीम जो है वो एक अव्यक्त वाणी है। 25 अगस्त 1971, इस एक मुरली पर 4 दिन की रिट्रीट है और उस मुरली का शीर्षक है 7 प्रकार की कमजोरी है और उसका निवारण 7 दिन का कोर्स। 7 कमजोरियों में से जो 7वें नंबर की कमजोरी उस मुरली में आई है वो है याद की यात्रा में संतुष्टता कम। ये बाबा किन से बात कर रहे हैं? बड़ी बहनों से। ये बाबा बात कर रहे हैं 71 में हिस्ट्री हॉल में चली हुई अव्यक्तवाणी है, ये सबसे गहरी अव्यक्तवाणियों में से एक वाणी। बड़े गहरे गहरे राज उसमें बाबा ने बताए हैं। 25 अगस्त 1971, 7 कमजोरियों में एक कमजोरी जो बताई वो है याद की यात्रा में संतुष्टता कम है। एक की याद कम है, देहधारियों की याद ज्यादा है। लोग कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, मेरा वो नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। यदि कोई माँ है और उसका बेटा अमेरिका में है और उस पता चल गया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होता है? अपने आप योग लगता है। योग परिणाम है प्रेम का, योग लगाना नहीं होता है। योग पुरुषार्थ नहीं है, योग क्या है? रिजल्ट है। किस चीज का? प्रेम का। एक मां को सोचना नहीं पड़ता अब मैं बैठ के अपने बेटे को याद करती हूं, वो चलते फिरते उठते बैठते उसे याद कर रही है, सारा ध्यान उसी की तरफ है। उसको क्या हुआ, बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए ये कंप्लेंट को समाप्त करना है। यदि योग लगाना है, यदि योग को बढ़ाना है, उत्तर है परमात्मा प्रेम को बढ़ाओ। भक्ति मार्ग में कहावत है 3 प्रकार के प्रेम एक हो जाए और भगवान की तरफ चले जाए तो भगवान खुद प्रकट हो जाएगा, तब तक नहीं। सबसे पहला एक मां का अपने बेटे के लिए जितना प्यार है, अपने बच्चे के लिए जितना प्यार है वो सारा प्रेम। दूसरा एक लोभी व्यक्ति का धन से जितना प्रेम है, और तीसरा एक कामी पुरुष का देह से जितना प्रेम है। ये तीनों प्रेम एक हो जाए और भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाए तो स्वयं भगवान प्रकट होकर आएगा। क्या हमारा प्रेम ऐसा है? और बाबा से प्रेम अर्थात 2 तो इसी टॉपिक में है। बाबा से प्रेम अर्थात 10 बातों से प्रेम, भगवान से प्रेम अर्थात खाली बाबा 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 कहना नहीं, बाबा से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके सिखाए हुए राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से सेवा केंद्र से प्यार, बाप से प्यार अर्थात बाप ने जिन आत्माओं को आपका निमित्त बनाया है उन आत्माओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी स्थापन की हुई राजधानी से प्यार। इतनी बड़ी परिभाषा है परमात्मा प्रेम की। प्रभु प्रेम अर्थात खाली बाबा 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 कहना नहीं। तो यह सबसे पहली बात थी एक बाबा। तो सभी स्थिर बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा, मन को एकाग्र करेंगे, शरीर एकदम रिलैक्स, सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख और बाबा से बातें, एक तुमसे ही प्यार, एक तुम्हारी ही याद, एक तुमसे सर्व संबंध, एक तेरी ही लगन में मगन, बाबा ब्राह्मणों की इस सभा में आज मैं आत्मा अपने आप को समर्पित करती हूं। एक तू ही सर्वस्व, तेरा ही आधार, तू ही बल, तू ही भरोसा, एक में निश्चय, एक तू ही सब कुछ, एक वही बाबा से सख्त शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा नीचे उतरती हूं। ओम शांति। रोज दिनचर्या में बीच बीच में, अमृत वेला नहीं, दिनचर्या में बीच बीच में सूक्ष्म वतन में चले जाना, बाबा को सामने देखना, दृष्टि लेना और वापस आ जाना, ये अभ्यास करना है। ऐसा ना हो कि अमृत वेला याद किया और फिर सारे दिन भर भूल गए। तो एक बाप, दूसरा बताया एक मुरली। मुरली का क्या करेंगे? सुनना सुनाना ये एक काम है। आज का वरदान ज्ञान स्वरूप अर्थात सुनना सुनाना नहीं, शक्तिशाली संकल्प में स्थित होना। सूर्य है, प्रकाश है, मुरली में पांच बातें करनी है। एक है मुरली क्लास जाना, मुरली में बैठना, डायरी खोलना, पॉइंट्स लिखना, डायरी बंद करना और वापस आ जाना। बाबा ने कहा यह है पुरानी चाल, इससे काम नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है मुरली में मनन। क्या करना है? मुरली का चिंतन। बाबा ने ये बात आज क्यों कही? सारे दिन भर बुद्धि में यदि ज्ञान नहीं तो व्यर्थ आएगा, पर चिंतन आएगा, पर दर्शन आएगा, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं और चिंतन करना है। जैसे आज की मुरली, तीन प्रकार के बच्चे हैं, कौन कौन से, कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम बच्चे वो है जो दूसरों को उत्तम बनाए, तीखे बच्चे वो है जो अपने ज्ञान के खजाने को बांटे। रिफाइननेस लानी है ज्ञान सुनाने में, सुबह की साकार मुरली। केवल बैठने से, केवल सुनने से, केवल लिखने से काम नहीं होगा। 63 जन्म के संस्कार है वो केवल मुरली सुनने से मिटने वाले नहीं है। कुछ पुख्ता कदम, कुछ शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली एफर्ट, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मुरली का सभी क्या करेंगे, कल से, आज से क्या करेंगे? मनन। उसके बाद है मुरली में पांच शब्द आते हैं, MURLI इंग्लिश में। यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, मुरली को समझना है ये कह क्या रहा है भगवान। कल की मुरली में था बाप तुमको जो सिखलाते हैं वो केवल तुम समझते हो, बाप समझते हो और कोई नहीं। बाबा क्या कह रहा है? अगर ये तीन कैटेगरी है बच्चों की, मैं कहां हूं, मध्यम में हूं, कनिष्ठ हूं या उत्तम हूं? मध्यम क्या होता है, कनिष्ठ क्या होता है, समझना है, उसकी गहराई में जाना है। तीसरा है आर। आर अर्थात रीडिंग। मुरली केवल सुनना नहीं है, क्या करना है? पढ़ना। दादी का उदाहरण पता है ना सबको, माताओं को। दादी जब 1936-37 में या थोड़ा लेट ज्ञान में आई तो दादी को था कि मैं बहुत लेट हो गई, हम अभी आए और हमको अब भी नहीं लगता कि हम लेट हो गए। दादी को तब चिंता हो गई कि मैं बहुत लेट पहुंची, बाकी दादियां, बाकी बहनें मेरे से कब से पहले आ गई, कब? 36 में। बाबा से पूछा दादी ने, सब जानते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मैं इतना लेट आ गई। बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। 12 बार मुरली पढ़ना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर हमसे कोई कहे 2 बार पढ़ो, हमसे 1 बार भी नहीं होता, हम खाली सुनते हैं बस, पढ़ने को टाइम कहां है। तो दादी ने क्या कहा था, अगर मैं 24 बार पढ़ू तो, 24 बार मुरली पढ़ना बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है जीवन का। आज तक पढ़ी किसी ने 24 बार? किसी ने पढ़ी हुई तो हाथ खड़ा करना। 24 बार, 12 बार, 12 बार भी नहीं। टीवी का सीरियल एक बार देखा है, फिर से देखने की इच्छा है, पर मुरली एक बार पढ़ी है, वापस पढ़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों? शायद इंटरेस्ट कम है, शायद वही बातें आती है, बाप आया है, दैवी गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, अब तुमको घर वापस चलना है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, बाप पतित पावन है, तुमको सेवा भी बहुत करनी है, मैगजीन भी पढ़ना है, पतित आत्माओं का कल्याण करना है, इधर से सुना और इधर से गया, इतनी बार सुन चुके, सुना है पर रही सही में समझा है क्या उसको? शायद नहीं। तो मुरली को पढ़ना, रीडिंग बहुत जरूरी है, और आर में ही है रिवीजन करना उसका। अभी जो मुरली की बात बताई, जिसमें स्पार्क में कॉन्फ्रेंस चालू है ओआरसी में, उसी मुरली में बाबा ने कहा है 25 अगस्त 1971, तुमको रिवाइज करना है 7 डे का कोर्स। रिवीजन के 3 फायदे बताए, जब मुरली रिवाइज करते हो तो नवीनता आएगी, शक्तिशाली बनोगे और सफलता मिलेगी। ये 3 फायदे बताए मुरली रिवाइज करने के। मुरली रिवाइज करना अर्थात पढ़ के सुनाना नहीं, हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, रिवाइज एक्सप्लेनेशन और आपस में चर्चा। तो मुरली पढ़ना, रीडिंग एंड रिवीजन। कौन कौन मुरली पढ़ता है, हाथ खड़ा करेंगे? पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं, रोज की मुरली पढ़ने वाले। पिछले 1 मास में जिन्होंने 1 बार भी मुरली मिस नहीं की बहने छोड़कर, वो कौन कौन है? धर्मराज की सभा है, ये भूलना नहीं, ये जगह, तो इसके लिए सोच समझ के हाथ खड़ा करना। बस इतने ही जिन्होंने 1 बार भी मुरली मिस नहीं की और बाकी सब ने की, तो भगवान तो बहुत ही खुश हो जाएगा। बाबा कहेगा वाह, ऊपर से फूल बरसेंगे, मैं परम धाम से आता हूं मुरली सुनाने और मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं, कमाल है, ऐसा कहेगा। इस भट्टी से संकल्प करना है कि 1 दिन भी मुरली मिस नहीं करेंगे। और जब हम कह रहे हैं मुरली मिस नहीं करेंगे, अर्थात ये नहीं कि अगर सेंटर किसी कारण से न जा पाए तो घर पे पढ़ना है, पर मिस नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे में वो पढ़ के और रिवाइज करके हो जानी चाहिए। एक बार पढ़ना, एक बार रिवाइज करना। तो MUR मुरली मनन, अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ, R अर्थात रीडिंग और रिविजन, L अर्थात सुनना भी बहुत जरूरी है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि लोग अपने घरों में बैठकर मुरली पढ़ लेते हैं या कार चलाते चलाते सुनते हैं, सेंटर नहीं जाते। पर सेंटर जाना केवल मुरली सुनने के लिए नहीं है, सेंटर का जो वायुमंडल है वो शक्तिशाली वायुमंडल है, सेंटर का जो वायुमंडल है वो पावरफुल ऑरा है, वहां पर वो किला है एक, वहां जाते ही अंदर अपने आप शक्ति भरती है। वैसे तो मुरली कहीं पर भी सुनी जा सकती है, पर वहां बैठकर सुनना ये नियम है यज्ञ का। और 5वां काम है इम्बाइब करना अर्थात धारण करना, मुरली को क्या करना, धारण करना। इसमें और कुछ चीजें जोड़ी जा सकती है, जैसे मुरली की चर्चा करना आपस में। कौन कौन है जो मुरली की चर्चा करते हैं? बहुत कम। मुरली सुन ली और फिर सारे दिन भर अगर कोई मिले तो उससे ये पूछना कि बाबा ने आज ये क्या कह दिया, ये वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, बजाय इसके कि तुम्हारे सेंटर में क्या हो रहा है और हमारी बहन ने ऐसा किया और मेरी ननद और मेरी सासू और मेरी बहू, ये चर्चा करने से अच्छा ये चर्चा कितनी अच्छी होगी कि आज बाबा ने ये बात कह दी। तो एक मुरली।
प्यार बढ़ाना है भगवान से, प्यार बढ़ाना अर्थात तो उसकी मुरली से प्यार बढ़ाना। आज की मुरली में एक एक महावाक्य कैसा है? आज सुबह की साकार मुरली, बाप का एक एक महावाक्य कैसा है? लाखों का है, हीरे है, मोती है, रतन है, और कितने हमारे हाथ में आ रहे और चले जा रहे, ध्यान ही नहीं है। तो सभी आज से पक्का करेंगे, ये हाथ खड़ा करो कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेंगे। ये धर्मराज की अदालत है, इंद्र का दरबार है, यहां पर हाथ खड़े किए जा रहे हैं। उसके बाद है तीसरा है मधुबन, एक बाबा, एक मुरली और तीसरा मधुबन। एक तो वो मधुबन है जो माउंट आबू में है, परंतु मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था मात्र नहीं है कि यह स्थान मधुबन है। मधुबन की परिभाषा विराट है। हर वो स्थान जहां पर प्रभु प्रेम है वो मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर परमात्म ज्ञान की चर्चा होती है मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर संपूर्ण पवित्रता है मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर मुरली सुनाई जाती है, सुनी जाती है, मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर राजयोग सिखाया जाता है, कराया जाता है, किया जाता है, मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर प्रभु सेवाएं हो रही है मधुबन है। मधुबन हमारा घर भी है, सेवा केंद्र भी है, सब कुछ मधुबन है। और सबसे मुख्य बात तो मधुबन की, अपने मन को ही मधुबन बनाना है, जहां पर मधुरता हो और वैराग्य हो, दोनों चीजें साथ साथ। और एक मधुबन तो वो है जो माउंट में है, जो बाबा का घर है, और जहां पर चार धाम है, और अभी हम उसी चार धाम की यात्रा करेंगे। कौन कौन से चार धाम है, कौन कौन है जो मधुबन आज तक गया नहीं, एक बार भी नहीं गया? कई सारे हैं। तो अभी जाने से पहले पहले ही पहुंचना है वहां मन से, अभी अभी। मधुबन में चार धाम है, कौन कौन से? सबसे पहला शांति स्तंभ। इन चारों धामों के लिए बाबा के कुछ शक्तिशाली महावाक्य है। बाबा ने कहा है तुमको अगर बहुत पावरफुल बनना है तो कहां आ जाओ? शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ में आ जाओ। यदि मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, वहां पर पूर्वजों के चित्र है, सभी दादियों के, दादाओं के। यदि बाप समान बनने का संकल्प है तो कहां चले जाओ? कमरे में। और अगर उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ, रोना आ जाए, अच्छा रोता कौन कौन है? एक मिनट हाथ खड़ा करना। पिछले एक मास में जो एक बार भी नहीं रोया, हाथ खड़ा करो। एक भी माता का हाथ नहीं है खड़ा, मतलब सब रोने वाली माता है इधर। बाबा कहते हैं जो रोता है वो विधवा है। विधवा कौन कौन है हाथ खड़ा करेंगे? जो विधवाएं हैं, जो बहुत रोती है, आंसू की टंकी है यहां पर भरी पड़ी। किसी ने कुछ कहा, आंसू चालू। किसी ने कुछ बोल दिया, आंसू चालू। किसी ने थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया, गलत व्यवहार कर दिया, आंसू चालू। पावरफुल आंसुओं की टंकी है। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, भगवान के महावाक्य है। रोना बंद। तो बाबा ने कहा उदास हो जाओ तो कहां आ जाओ? बाबा की कुटिया में आ जाओ। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे फिर से, सॉफ्ट म्यूजिक, मन को स्थिर कर देंगे।
संपूर्ण एकाग्रता। वायुमंडल शांत, मन का सारा तनाव समाप्त। शांति की तरंगे चारों तरफ भ्रुकुटी के मध्य विराजमान। मैं तेजस्वी आत्मा हूं। शांत स्वरूप मुझसे चारों ओर शांति की तरंगे। स्थूल शरीर को यहीं छोड़, मैं आत्मा उड़ रही हूं आकाश में। फरिश्ता रूप धारण कर आकाश में विचरण। मैं फरिश्ता उड़ता हुआ अरावली पर्वतों के ऊपर और पहुंच गया आबू पर्वत। नीचे उतर रहा हूं आबू की सरजमी पर। पांडव भवन, तपस्या कुंड, सर्वप्रथम शांति स्तंभ पर बच्चे, यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। शांति स्तंभ से निकल रही शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। उसके बाद मैं फरिश्ता उड़कर जा रहा हूं हिस्ट्री हॉल में। बच्चे, जब व्यर्थ संकल्प तेज हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना।
उसके बाद बाबा का कमरा। यदि बाप समान बनने की इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कुटिया में आ जाना है। बाबा का कमरा में बैठा, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति आ रही है, बाप समान अवस्था। और यदि उदास हो जाओ तो बाबा की झोपड़ी, बाबा से बातें कर रहा हूं, बाबा से रू रिहान, मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में, मधुबन की खुशबू मुझ में समाई हुई, और वो लेकर मैं आकाश में फिर से मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। ओम शांति। चौबीस घंटे में एक बार मधुबन की यात्रा करनी है। हर दिन एक बार मन से पांडव भवन पहुंचना, चार धाम की यात्रा करना और वापस आना। सभी करेंगे? मन से करना है। जो अनुभव शरीर से जाकर होता है उससे कई गुना अधिक अनुभव मन से जाकर होता है। चारों स्थानों पर जाना, बाबा से बात करके वापस आ जाना। तो एक बाबा जिसने कुछ बातें देखी, एक मुरली जिसमें कुछ बातें देखी, और एक मधुबन जिसकी हमें रोज यात्रा करनी है। और जब मधुबन जाए, और एक लास्ट बात इससे जुड़ी हुई, वहां से शक्ति भरकर आनी है। मधुबन जाने के बाद पहले तो ये बात तय करनी है कि वहां जाकर क्या क्या नहीं करना है। आधा समय हम देखते हैं लोगों का शॉपिंग में जाता है, शांतिवन के बाहर खरीदारी करने में, तपस्या रह जाती है बाजू में, इधर उधर की बातें करने में। वहां जाना है तो मौन में, वहां रहना है तो तपस्या के लिए, वहां जाना है बाबा से मिलन मनाने के लिए, और वापस आना है शक्तियां भरकर, खाली होकर नहीं। तो ऐसी ये कुछ बातें थी। तो अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के बाद वापस आ जाना है। फिर हम अपने जीवन के कुछ अनुभव की बातें आपको बताएंगे। ओम शांति।